जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय भक्त भक्तवृंद जय भूत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय भूत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे जी। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय चार और बोर्ड पे श्लोक लिखा हुआ है 106। गोपाल कहे पुरी अमर ताप नहीं आय मलाय ज चंदन ले पत बेस जुराय अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की सॉरी सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। गोपाल गोपाल अर्च विग्रह कहे ने कहा पूरी मेरे प्रिय माधवेंद्र पूरी आमार मेरा ताप शरीर का तापमान नहीं याय जाता मलय ज चंदन मलय पर्वत पर उत्पन्न चंदन की लकड़ी का लेप शरीर पर लेप करो तबे तब से वह जुराय ठंडा होगा। अनुवाद कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया गया था फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है, यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियां कभी कभी मलय पर्वत कहलाती है। मलय ज शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है, कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था किंतु अब उनको रबर के वृक्ष उगाना अधिक लाभप्रद लगता है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी किंतु अब वहां के सारे निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति लुप्त हो चुकी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज इस प्रातःकालीन कक्षा में। तभी पीछे हिज ग्रेस मोहन भक्त चंदपुर ने पिछले मंडे एक क्लास दिया था चेतन चरितामृत का, तो उन्होंने मुझे बोला था कि किस तरह से मैं सुदर्शन चक्र की तरह उनका पीछा कर रहा था। हालांकि ये मेरी सेवा है भागवतम क्लास को शेड्यूल करना। तो फिर जब क्लास खत्म हुई थी तो उसी समय जस्ट खत्म होते ही हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, मैं वहाँ पर बैठा था पीछे, मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला कि अब जो है अब अगली बारी कदम बिहारी कि अब जो है अगली बार आपको क्लास देना पड़ेगा। तो मैंने बोला गुरु जी मैं तो आज तक कोई क्लास नहीं दिया। तो कह रहे कि देखो ये जो है सुदर्शन चक्र जो है तुम सब सुदर्शन चक्र की तरह तुम सबके पीछे रहते हो, लेकिन सुदर्शन चक्र छोड़ा किसने? कोई मेरा ये मत भूलो कि सुदर्शन चक्र हमेशा किसी और के हाथ में रहता है। तो हालांकि मेरी कोई योग्यता तो नहीं है ना, मैं साहस कर रहा था यहाँ पे भक्ति का। तो एक तरफ प्रभु जी का आदेश था और दूसरी तरफ यहाँ पे बैठना था जिसका भी साहस नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इस दोनों में यहाँ पे बैठना ही ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी उपस्थित जितने भी सारे भक्त हैं सबका आशीर्वाद लेना चाहूंगा, खास करके यहाँ पे जितने वरिष्ठ भक्त हैं, हिजग्रेस श्याम कृष्ण गुरु, हिजग्रेस किशन भाई गुरु, हिजग्रेस नित्य धाम गुरु, और पीछे बैठे हैं हिजग्रेस हर्षित केशव गुरु, उसके अलावा जितने भी भक्त हैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे अंदर तो जैसे मैंने बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ चर्चा कर सकूँ। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज बहुत ही शुभ दिन है, क्या आज अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है ये बैसाख मास का तीसरा दिन है आज, और ऐसे शास्त्रों में जो है इस दिवस को लेके बहुत ही सारा इसके बारे में बताया गया है कि कितना ये महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आज के दिन हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसका कभी अंत नहीं होता, लेकिन अक्षय कुछ भी तभी हम जानते हैं कि आज के दिन आप देखेंगे बाहर काफी सारे लोग हैं जो जहाँ पे विवाह संस्कार, काफी बाहर लोगों का विवाह हो रहा है, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, या फिर इस तरह से मतलब जितने भी लोग कोई बिजनेसमैन है वो अपना नया व्यापार करने के बारे में सोचते हैं। तो इसके पीछे यही है कि ऐसा बताया जाता है कि अगर आज के दिन कुछ भी शुरू करते हैं तो उसका मतलब जो है कभी क्षय नहीं होता, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस भौतिक जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कार्य है कि जिसको हम शुरू करेंगे तो उसका क्षय नहीं होगा? है ऐसा कोई कार्य? हालांकि शुभ होता है लेकिन हर किसी का अंत हो जाता है। वास्तव में भक्ति ही एक ऐसा चीज है जिसका कभी क्षय नहीं होता, भक्ति अपने आप में अक्षय है। हालांकि जो बिजनेसमैन है वो अक्षय तृतीया का वेट कर सकता है कि कब अक्षय तृतीया आएगा तो अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन भक्ति को करने के लिए हमें अक्षय तृतीया का वेट नहीं करना चाहिए। जब से आप शुरू करेंगे वही दिन आपके लिए अक्षय तृतीया बन जाएगी। तो इसलिए जो है जब भी मौका मिले हमें भक्ति अपनाना चाहिए, तभी हम देखते हैं कि हम प्रतिदिन हम यही करते हैं श्रवण कीर्तन। आज हम कुछ नया नहीं कर रहे, आज भी हम यही कर रहे हैं, आज भी जो हमारा पूरा एक्टिविटी है वो यही है। और साथ ही साथ जैसे शास्त्रों में बहुत ही महिमा बताई गई है आज के दिनों की, ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ था, यानी कि जो सतयुग है उसका जो पहला दिवस है वो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होती है। और आज ही के दिन जो है भगवान परशुराम का प्रकट हुआ था, और आज ही के दिन भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे जिन्होंने वेदों की रक्षा की थी, और आज ही के दिन नर नारायण भी अवतार लिए थे। और ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन ही गंगा देवी जो है पृथ्वी पे प्रकट हुई थी, और ये भी बताया जाता है कि आज के दिन जो है सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिले थे, और ये भी बताया जाता है कि आज के दिन ही सूर्य भगवान जो है द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। हम जानते हैं ये कहानी किस तरह से अक्षय पात्र ने उनकी रक्षा की थी। तो इसी तरह से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन मैं भी जो है भारतम क्लास देना शुरू करूं। और साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि अभी चंदन यात्रा है, तो अब इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, और संन्यास लेने के बाद जो है वो जगन्नाथपुरी से मायापुर शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की तरफ निकले थे, और जब वो जा रहे थे तो उनके साथ चार और भक्त थे। कौन कौन? स्वयं नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित और मुकुंद। तो ये चार भक्त जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो जब महाप्रभु पुरी जा रहे थे, तो हम जानते हैं कि पुरी से कुछ पीछे जो है बालासोर नाम का जगह है, वहाँ पे उसी के पास में एक गांव है जिसका कि नाम है रेमुना। तो महाप्रभु जो है उस गांव में जाते हैं, और उस रेमुना गांव में जो है गोपीनाथ जी का विग्रह है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो महाप्रभु ने सोचा कि जगन्नाथपुरी जाने से पहले यहाँ पे जो है गोपीनाथ के दर्शन करें। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे गए और गोपीनाथ का उन्होंने दर्शन किया, तो यहाँ पे बताया जाता है, रेमुनाथ गोपीनाथ परम मोहना, भक्ति करी कल प्रभु तार दर्शन। रेमुना के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। हालांकि आप में से कितने लोग रेमुना के मंदिर में गए? हम जानते हैं कि इस मंदिर में जो है मुख्यतः तीन विग्रह हैं, गोपीनाथ जी की, मदन मोहन की और गोविंद देव की। हालांकि एक और विग्रह है छोटा सा, राधारास बिहारी जी। तो तीनों विग्रह बहुत ही सुंदर है, और खास करके जो गोपीनाथ है वो बहुत ही आकर्षक है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, भगवान का दर्शन किया, तारा पादा पद्म निकट प्रणाम करिते, तारा पुष्प चूरा परिल प्रभु रमाथाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे, तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। तो जब उस टेम्पल में महाप्रभु प्रणाम कर रहे थे, तो इस तरह से स्वयं गोपीनाथ की कृपा हुई, उनके मस्तक पे जो है महाप्रभु गोपीनाथ की जो मुकुट का फूल गिर पड़ा। उसके बाद जो है श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही खुश हो गए, और उसके बाद उस मंदिर के प्रांगण में अपने सभी भक्तों के साथ जो है बहुत ही उन्मत्त नृत्य करने लगे, बहुत ही भाव विभोर के साथ जो है नृत्य करने लगे। तो इस नृत्य को देखकर जो वहां का पुजारी था वो बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही आकर्षित हुआ। उसके बाद जब नृत्य खत्म हुई, तो महाप्रभु जो है महाप्रभु के पास जो वहां का पुजारी है वो गोपीनाथ का जो है प्रसाद लेकर आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उस मंदिर में जो है गोपीनाथ मंदिर में जो 12 कसोरे जो है खीर भगवान को भोग लगते हैं, तो वो सारा जो है महाप्रभु के पास लेकर आए। तो महाप्रभु थे और महाप्रभु के साथ चार भक्त थे, तो कुल मिला के महाप्रभु 5 लोग थे। तो महाप्रभु ने 5 दोनों खीर स्वीकार किया, और बाकी जो है 7 उन्होंने पुजारियों को वापिस कर दिया। और उसके बाद जो है महाप्रभु वो खीर खाने लगे, और खाते खाते अपने सभी भक्तों को बताते हैं कि किस तरह से ये जो गोपीनाथ है, ये खीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात है। और सिर्फ विग्रह ही नहीं, यहाँ का जो खीर है वो विग्रह से भी ज्यादा प्रसिद्ध है, और इस खीर को जो है अमृत के लिए बोला जाता है। तो महाप्रभु ने जो है फिर उन सभी भक्तों को बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु, उनके गुरु कौन है, ईश्वरपुरी से जो है इस यहाँ के खीर चोर गोपीनाथ के बारे में और माधवनपुरी के बारे में जो उन्होंने कथा सुनी थी वो अपने उन सभी भक्तों को बताने लगे। तो वो फिर बताते हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में, उन्होंने बताना शुरू किया। जैसे हम जानते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी थे वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, हमेशा भगवान के प्रेम में वो मत रहते थे। ऐसा बताया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, प्रेम मत नहीं तार रात्रि दिन ज्ञान, छने उठे छने परे नहीं स्थान स्थान। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे, और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात, कभी ये उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते, उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। तो कहने का मतलब यह है कि माधवेंद्रपुरी को बिल्कुल अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता था कि किस तरह से उनका शरीर कार्य कर रहा है, कब वो उठ रहे हैं, कब वो बैठ रहे हैं, कब वो चल रहे हैं। तो इतना वो भगवान के प्रेम में मत रहते थे। तो एक बार की बात है, वो इसी तरह चलते चलते वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आने के बाद जो है वहाँ पे गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, और गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद वहाँ पे गोविंद कुंड में आते हैं और वहाँ पे स्नान करके, स्नान करने के बाद संध्या का समय हो जाता है, वहाँ पे वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं और वहाँ पे बैठते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं। और माधवेंद्रपुरी जो है काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, काफ़ी दिनों से उपवास किया था। वास्तव में जो हम जानते हैं कि जो सन्यासी हैं वो भी जो है अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा करते हैं, मधुकरी करके जो है वो चलते हैं, लेकिन जो माधवेंद्रपुरी थे वो सन्यासी में भी जो एकदम हाईएस्ट परमहंस की अवस्था पे थे। वो बिल्कुल भी कभी भी किसी से कुछ मांग कर नहीं खाते थे। उनको लगता था एक्चुअली कि वास्तव में जो भगवान है इस सृष्टि में सबका पालन कर रहे हैं, तो अगर भगवान चाहेंगे कि अगर मैं खाऊं तो वो किसी न किसी को मेरे पास भेज देंगे, और अगर वो चाहेंगे कि मैं आज भूखा ही रहूं, उपवास ही रखूं, तो वो किसी को नहीं भेजेंगे। तो वास्तव में ये एक महाभागवत परमहंस वैष्णव का भगवान के प्रति ये श्रद्धा होती है। और ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी से मांग के भी नहीं खाते थे, और जब कुछ खाते थे तो सिर्फ दूध पीते थे। मतलब ये सोचने वाली बात है, मान लीजिए कि आपने ये व्रत लिया है कि किसी से मांग कर नहीं खाऊंगा, और कोई आपके पास कुछ खाने की वस्तु लेके आता है, मान लीजिए कि मिठाई लेके आ गया या कोई और भी किसी तरह का अन्य सामग्री लेके आ गया, तो वो जो है सिर्फ दूध लेते थे। अब वो उस व्यक्ति को कह भी नहीं सकते थे कि मैं सिर्फ दूध लेता हूं, क्योंकि वो मांग कर खाते नहीं थे। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही जो है उनका पूरा पालन पोषण करते थे, भगवान ही जो है उनको खिला देते, क्यों किसी को भी नहीं पता कि माधवेंद्रपुरी सिर्फ दूध लेते हैं, और कोई उनके पास लेके भी आए तो जो अगर सिर्फ दूध लेके आया तभी वो स्वीकार करते थे, अन्यथा और कुछ नहीं। तो इस तरह से वो वहां पे बैठे थे, तभी अचानक एक दिन क्या हुआ, गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किछु बलिलहसिया। जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला, पूरी यही दुग्ध लैया कर तुम्हें पान, मांगी के ना नहीं खाओ की बा कर ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं। बालक रह सौंदर्य पूरी हो संतोष, ताहर मधुर वाक्य गेल भूक सोष। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए, उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। पूरी कहे के तुम्हें कहा तो मारवास, के मते जानी लमी करी उपवास। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ। बालक कहे गोपामी यही ग्रामवासी, आमर ग्राम ते कहे न रहे उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वाल बाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। इस तरह से बालक कहने लगे कि मेरे गांव में जो है बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग जो है, और यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता, कई लोग हैं जो कि मधुकरी करके खाते हैं, कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते सिर्फ दूध पीते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते, किसी से मांग के नहीं खाते। तो जो इस तरह के लोग हैं वो बालक कह रहे हैं उनके लिए मैं स्वयं दूध लेके आता हूँ। लेकिन माधवेंद्रपुरी बड़े आश्चर्यचकित है, कैसे इसको पता चला कि मैंने कुछ खाया नहीं। तब वो कहते हैं बालक, जल नीते स्त्री गण तुमार देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया अमर पठाइला। पानी लेने आने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा, तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। तो इस तरह से उस बालक ने कहा कि यहाँ इसी गांव की जो स्त्री है वो यहाँ पे जल भरने आई थी, तो उनको लगा कि आप बहुत दिनों से उपवास पे आपने कुछ खाया नहीं, तो उन्होंने मुझे ये दूध लेकर भेजा। और फिर दूध देने के बाद बालक ने माधवेंद्रपुरी कहा कि आप इसका पान कीजिए, और मैं तो ग्वाल हूँ, मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा, मुझे वापस जाके अपने गाय को धोना है, तो आप इसको पीजिए और मैं कुछ ही देरों में कुछ ही क्षणों में दोबारा वापस आऊंगा और आपसे यह पात्र लेकर जाऊंगा। तो उसके बाद जो है वो बालक वहां से चले गए और माधवेंद्रपुरी ने उसका जो है दूध का पान किया और फिर उस पात्र को धोकर उसका उस बच्चे का वेट करने लगे। दुग्ध पान करी भांडा धुइया रखिला, बाटा देखे से बालक पुनः न आइला। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया, फिर वे उस बालक की राह देखते रहे किंतु वह बालक नहीं लौटा। तो इस तरह से वेट कर रहे, बालक आए नहीं। वासी नामा लैया पूरी निद्रा नहीं है, शेष रात्रे तंद्रा होइला बाह्य वृत्ति लय। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्यकार रुक गए। स्वप्न देखा से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लिया गेला हाथे ते धरिया। ऐसी श्री राधा रत्न भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा, वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। तो उसी समय बालक जो है माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और माधवेंद्रपुरी को जो है वहाँ पे अपने स्वप्न में ही जो है बालक अपने हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुरी को अपने साथ ले जाते हैं। कुंजा देखाया कहे आमी ए कुंजरिया, सीता वृष्ट वतांगिते महादुख पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। तो बालक ने उनको कहा, वास्तव में भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कहा कि जो पहले जो है जो भगवान का जो भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं ब्रजनाथ जानते हैं, उन्होंने इस विग्रह की स्थापना की थी वहां पे, लेकिन बाद में जब मुसलमान राजाओं का आक्रमण हुआ था तो जो वहाँ के पुजारी थे वो डर के मारे जो उन्होंने जो गोपाल के विग्रह उन्होंने इस झाड़ी में छुपा दी थी, ताकि उनको डर था कि इस विग्रह को कोई क्षति न पहुंचे, और उसके बाद जो है पुजारी वहां से डर के कारण भाग गए थे। तो भगवान कहे थे माधवेंद्रपुरी के कि मैं तब से लेकर अभी तक यहीं पे हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा है, जो ये जो आंधी तूफान बारिश गर्मी सर्दी सबका जो है सामना करना पड़ रहा है। तो फिर भगवान जो है उनको आदेश देते हैं, ग्रामीण लोक आनी आमा काढ़ा कुंज होते प्रवते ऊपरी लैया राख भल मते। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि यहाँ से निकालकर मुझे पर्वत की चोटी पर एस्टैब्लिश कीजिए, स्थापित कीजिए। और फिर वास्तव में भगवान उनको कहते हैं कि मैं वास्तव में बहुत दिनों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान के अनन्य भक्त थे। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो मेरे प्रति प्रेम है तो मैं वास्तव में इसलिए आपसे ये सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप यहाँ पे जो वृंदावन इस गोवर्धन प्रांत में आएंगे और कब मैं आपसे ये सेवा लूंगा। और भगवान कहते हैं कि तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बस अकल संसार। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो उसके बाद जो है जब माधवेंद्रपुरी का इस तरह से उसके बाद स्वप्न खत्म होता है, फिर जब सपने के बाद वो उठते हैं तो बहुत पश्चाताप करते हैं कि वास्तव में किस तरह से जब मैं यहाँ पे बैठा था उपवास में था तो किस तरह से ये बालक आया था मुझे दूध का पात्र देकर गया था और मैं इसको पहचान नहीं पाया, यही जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, यही गोपाल है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि लेकिन भगवान ने जो मुझे कुछ आदेश भी दिए हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। और फिर उन्होंने किया कि अगले दिन वो गांव में गए और वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने सभी को एकत्र किया और फिर सबको बताया कि किस तरह से भगवान जो उनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने किस तरह से उनको आज्ञा दी कि इस झाड़ी से निकालकर उनको जो है पर्वत की चोटी पे स्थापित करना है। तो ये सब जब वहां के ब्रजवासी लोग सुने तो बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। हम जानते हैं कि जो ब्रजवासी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो उनके पिछले जन्म की बहुत ही भक्ति होती है या वो उस स्तर के होते हैं तभी उनको जो है ब्रज में जन्म मिलता है। और जो भी ब्रजवासी है वो बचपन से भक्त होते हैं, उनका स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण होता है। तो जब माधवेंद्रपुरी ने उनको इस तरह से बताया तो वो सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और फिर वो माधवेंद्रपुरी के साथ निकल पड़े। तो फिर सबको जो है एकत्रित करके माधवेंद्रपुरी उनको गाइड किया क्योंकि उनको भगवान ले गए तो उनको पता था कि कहाँ से जाना है और कहाँ पे जो है सो भगवान मिलेंगे। तो उसके बाद जो है वो वहां पे गए और उसके बाद उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी कि किस तरह से जो है बहुत प्रयास करने के बाद जो है भगवान वहां पे उन सबको दिखे। तो जितने भी लोग थे इस भगवान के इस विग्रह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको बहुत आश्चर्य भी हुआ। तो फिर उन सब ने जो है उस विग्रह को झाड़ा, उन्होंने उसके ऊपर से जो मिट्टी को मिट्टी झाड़ी और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो विग्रह है वो बहुत ही भारी है, इसका जो वजन है बहुत ही ज्यादा है, उसको कोई दो चार लोग उठा नहीं सकते थे। फिर उन्होंने उस में से जितने भी जो एकदम मजबूत लोग थे, जो पहलवान थे जिनके पास काफी शक्ति थी, उन्होंने उन लोगों को आगे किया और उन लोगों ने जो है उस विग्रह को बहुत ही मुश्किल से उठाकर और पूरा पर्वत की चोटी पे ले गए और वहां पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा, उस पे भगवान को स्थापित किया और एक दूसरा बहुत ही बड़ा पत्थर जो है उस विग्रह के पीछे रखा उसके सपोर्ट के लिए। और उसके बाद जो है माधवेंद्रपुरी ने वहां पे उस गांव में जितने भी ब्राह्मण थे सबको जो है वहां पे एकत्रित किया और सारे ब्राह्मण मिलके जो है उनको भगवान को जो है सबसे पहले उन्होंने अभिषेक किया। तो ऐसा बताया जाता है कि जो गोविंद कुंड से सबसे पहले जो है 900 घड़ा पानी जो है गोविंद कुंड से उठाकर ले गए उस पर्वत की चोटी पे। तो उसके बाद जो है उस सारे पानी से जो है भगवान का अभिषेक हुआ और इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने भगवान का अभिषेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो वहां पे मंगलाचरण करके जो है भगवान का पंचगव्य से अभिषेक करते हैं, फिर पंचामृत से और उसके बाद जो है फिर से दोबारा उस विग्रह का जो है 100 घड़े घी से और अभिषेक करते हैं और फिर 100 घड़ा जल से दोबारा अभिषेक करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान काफी दिनों से वहां पे थे तो काफी जो है उनके शरीर में गर्मी थी। तो उन्होंने भगवान ने बोला भी था कि मेरा शीतल जल से अभिषेक करो, तो फिर दोबारा किया। उसके बाद जो है फिर भगवान के पूरे बॉडी के ऊपर जो है सेंटेड ऑयल जो है तेल से जो है मसाज किया गया और उसके बाद दोबारा जो है हजारों घड़े पानी से फिर भगवान का जो है दोबारा अभिषेक होता है। और उसके बाद जो है अभिषेक करने के बाद जो है भगवान को आरती होता है और उसी समय जो है पूरे गांव में गोवर्धन में सबको पता चल जाता है कि किस तरह से जो है गोपाल जी की वहां पर स्थापना हुई है और उनका अभिषेक होने जा रहा है। तो जितने भी लोग थे उस गांव के सभी जो है वहां पे धीरे धीरे कर एक एक करके सभी आना शुरू हुए और वो सब जब आए तो अपने खाली हाथ नहीं आए सभी जो है, क्योंकि अभिषेक होने के बाद भगवान की आरती होती है उसके बाद भगवान को भोग लगता है। तो उसके लिए जो है जो सभी लोग उनके घर में जितनी भी सामग्री थी वो सब जो है वहां पर उसी जगह पे सब अपने घर से सामग्री लेकर आने लग गए। और ऐसा बताया जाता है कि उनके घर में जितने भी अन्न थे, जितने भी घी तेल सब कुछ लेके आते हैं और उसके बाद जो है माधवेंद्रपुरी ने वहां पे लगभग 10 ब्राह्मणों को जो है अन्न पकाने की सेवा में लगाते हैं और 5 ब्राह्मण को जो है सब्जी बनाने के लिए बोलते हैं और कुछ 10 व्यक्ति को चपाती बनाने के लिए। इस तरह से जो है सुबह से पूरा का पूरा जो है भोग बनना भगवान का शुरू हो जाता है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं यहाँ पे कि अन्न तो इतना था लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो है मिठाई भी वहां पे आए थे। तो वो कह रहे हैं कि इतना मिठाई था, इतना वहां पे था कि उसका कृष्णदास कविराज कह रहे हैं भोग सामग्री आयला संदेशा दियत नाना उपहार कहते पारी कत। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयां और अन्य उपहार लाए गए, मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। इतने सारे वहां पे व्यंजन आए थे। वैसे तो गोवर्धन खुद ही पर्वत है और इसके साथ साथ जो है अन्न का भी जो है पर्वत बन गया, इस तरह से भोजन सामग्री का भी अलग अलग पर्वत बन गया। और उसके बाद जो है आरती के बाद स्वयं माधवेंद्रपुरी जो है सारा का सारा अन्नकूट जो है गोपाल को भोग लगाते हैं, ऑफर करते हैं। और ऑफर कर और जब वो भोग लगाते हैं तो इसके बाद जो है भगवान काफी दिनों से कुछ खाए नहीं थे, तो उन्होंने जो है सब कुछ एक एक करके एक से एक करके खाना शुरू करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो माधवेंद्रपुरी है वो वहां पे उस समय देख पाए कि किस तरह से गोपाल जो है ये पूरा का पूरा अन्नकूट जो है खा रहे हैं, और चूंकि वो अपने दिव्य हाथ से उसको स्पर्श कर रहे हैं तो खाने के बाद वो पूरा का पूरा चीज एज इट इज वहीं पे रहता था। इस चीज को वैसे कोई अगर बाहर के लोग हो, नास्तिकवादी हो, वो इस चीज को नहीं समझते कि किस तरह से भगवान जो है भोग का स्वीकार करते हैं और फिर वो पूरा का पूरा बच जाता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने उन सब घटनाओं को देखा कि किस तरह से गोपाल जो है सब कुछ खा रहे हैं, और वो काफी दिनों से भूखे थे तो उन्होंने सब कुछ खाया। और जब सब कुछ उन्होंने खा लिया, माधवेंद्रपुरी ने देखा, उसके बाद जो है दोबारा उन्होंने जो है फिर से भगवान की आरती की, और उसके बाद जो है भगवान को सोने का अरेंजमेंट किया। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने सभी सबसे पहले उन्होंने जिन ब्राह्मणों ने उसकी कुकिंग की थी सबसे पहले उनको बुलाया और उनको बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस गांव के सभी को जो है ये प्रसाद खिलाओ। तो सबसे पहले उसमें जो है ब्राह्मण को खिलाया गया, ब्राह्मण की पत्नियों को खिलाया गया, और उसके बाद उस गांव के जितने भी लोग थे सबको जो है उस गोपाल जी का प्रसाद खिलाया गया। उसी गांव के लोग ने जो वहां पे अन्य गांव से भी जो दूसरे लोग आए थे उनको भी यह प्रसाद खिलाया गया। तो इस तरह से जब सबने प्रसाद खाया तो सबसे अंत में जो है माधवेंद्रपुरी ने स्वयं जो है उन्होंने बस थोड़ा सा दूध का पान किया और उसके बाद जो है उन्होंने विश्राम करने लगे। तो इस तरह से जो है वहां पे सभी को जो है ये खबर जो है दूर दूर तक और भी ब्रज के दूसरों गांवों में ये खबर फैलने लगी कि किस तरह से गोवर्धन में जो है गोपाल का अवतरण हुआ है। तो सभी गांव वाले ने वहां पे आए, उन्होंने गोपाल जी के दर्शन किए और वो जो है माधवेंद्रपुरी के पास वो जो है अप्रोच करना शुरू किया। और उन्होंने बोला माधवेंद्रपुरी को कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव से भी जो है गोपाल जी के लिए जो है एक दिन जो है अन्नकूट का भोग लगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारे गांव से आए थे तो सबने जो इस तरह से बुकिंग करना शुरू किया, आज के दिन जो है मेरे गांव की तरफ से गोपाल जी को भोग लगेगा, कल मेरे गांव की तरफ से। तो इस तरह से जो है रोज ये फेस्टिवल होने लग गया और रोज जो है भगवान को पूरा का पूरा जो गांव के लोग होते थे वो अपने गांव से पूरा सामग्री लेके आते थे, यहाँ पे कुकिंग होता था और भगवान को भोग लगाते थे। और हर रोज इस तरह से होने लगा और हर रोज सबसे अंत में जो माधवेंद्रपुरी थे वो सिर्फ थोड़ा सा दूध का पान करते थे। तो इस तरह से जो है माधवेंद्रपुरी यह सब देख के बहुत ही खुश थे कि किस तरह से भगवान का पूजा हो रहा है। और साथ ही साथ जो वहां पे जो मथुरा के राजा थे जब उनको पता चला तो वो वहां पे आए और उन्होंने गोपाल जी को है बहुत सारा उन्होंने चीजें भेंट की, वहां पे उन्होंने मंदिर बनवाया और किसी ने जो है बहुत ही अलंकार यानी कि सोना चांदी इस तरह से बहुत सारा गिफ्ट जो है उन्होंने गोपाल जी को भेंट में दिए। और ऐसा बताया जाता है कि जितने भी लोग थे उनके पास जितना भी जमीन था वो सब कुछ जो है उन्होंने कुछ कुछ जो है उसमें से अपना हिस्सा जो है उन्होंने गोपाल जी के नाम कर दिया, या जितने भी लोग रहते थे जितने भी उस गांव के लोग थे उनके घर में जो भी सोना चांदी थी उसका कुछ हिस्सा जो है उन्होंने गोपाल जी के नाम कर दिया। और उस गांव में जितने भी लोग थे सब ने जो है एक एक गाय गोपाल जी के नाम कर दिया। इस तरह से गोपाल जी के पास कितने गाय हो गए, लाखों। इस तरह से जो है गोपाल जी की पूंजी बढ़ती गई और गोपाल जी सबसे धनी हो गए, सबसे धनी हो गए उस जगह उस गांव में। उनके पास इतनी गाय थी, इतना जमीन था, इतना सब कुछ था। तो वास्तव में यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है कि पुराने समय में जो है इस तरह का एक कल्चर होता था। जैसे देखिए वैसे तो हम बोलते हैं कि सारा जमीन जो है भगवान का है, सारा जमीन गोपाल का है, लेकिन वास्तव में ऐसा है। हम देखते हैं कि पुराने जैसे कि इसी लीला में हम देखते हैं किस तरह से राजा महाराजा ने यहाँ पे टेम्पल बनाया और उस गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने सब कुछ जो भी जितना भी वो दे सकते थे अपने हिसाब से भगवान को दिया। तो इस तरह से पहले कल्चर, तभी हम देखते हैं साउथ इंडिया में और अन्य कई जगहों पे कि कितने बड़े बड़े मंदिर थे जो राजा महाराजा बनाते थे। और वहां पे उसके बाद जो उस गांव में जितने भी लोग होते थे इस तरह से भगवान को अपना केंद्र बिंदु मानकर अपना जीवन जीते थे और वो देखते हम यहाँ पे इस लीला में कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है अभी देखते हैं कि जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने आप का उनका जो पूरा जीवन है सिर्फ उसमें उनका अपना परिवार अपना घर अपना रिलेशन यही सेंटर होता है। लेकिन उस समय के लोगों में जैसे कि मान लीजिए एक गांव है वहां पे एक मंदिर है तो सबके जीवन का केंद्र जो है टेम्पल होता था और हर कोई अपने जितना भी जमीन का हिस्सा सोने चांदी का हिस्सा इस तरह से मंदिर को देता था और मंदिर जो होता था वो उस जगह में सबसे शक्तिशाली पोजिशन पे होता था। यानी कि मंदिर को कहीं पे अपने आर्थिक चीजों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता था मांगना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जो उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है कोई भी उसको जो है देख नहीं रहा। ये उस समय एक कल्चर था तो इस तरह से वहां पे जो है इस तरह से रोज फेस्टिवल होने लग गया और ये लगभग 2 साल तक चला। 2 साल तक रोज जो है अन्नकूट होता था और गोपाल जी को भोग लगाया जाता था और माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही प्रसन्न थे कि किस तरह से जो गोपाल जी की पूजा हो रही है यहाँ पे। तब जो है एक दिन अचानक जो है भगवान जो है उनके सपने में दूसरी बार आते हैं और दूसरी बार आते हैं और जैसे कि हमने यहाँ बोर्ड में देखा कि उनको जो है दूसरी बार फिर से उनको ये आदेश देते हैं कि मेरा शरीर का गर्मी जो है अभी तक शांत नहीं हुआ, आप जो है मलिया क्षेत्र में जाओ और वहाँ पे वहाँ से जो है चंदन लेके चंदन को जो है मेरे लिए लेके आओ। तो वैसे देखा जाए जब ये सपना है वैसे कहते हैं लोग कि जो है जैसे एक भजन भी है रात शाम सपने में आए है कि नहीं। वैसे साधारणतः लोग जानते हैं कि जो भगवान जो है सपने में आ गए तो यही सब कुछ है, इसके परे जो है वो कुछ सोच नहीं पाते। भगवान सपने में आ गए ठीक है और सबको बताने लग जाएंगे कि जो है सो कल जो है शाम को कल रात में जो है भगवान मेरे सपने में आए। तो एक बार इसी तरह एक डिसाइपल था वो श्रील प्रभुपाद जी के पास जाते हैं वो भी इसी तरह से कहते हैं कि प्रभुपाद कल जो है रात में भगवान मेरे सपने में आए थे। तो भगवान ने कहा कि आज तो ठीक है तो तुम भगवान के लिए आज क्या सेवा करने वाले हो, सपने में आए तो ठीक है लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा होना चाहिए, यानी कि बस सपने में आए बस वही सफिशियंट है, उससे आगे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं भगवान और उसके बाद जो है उनको ये आदेश देते हैं। तो देखा जाए अगर इस पर विचार किया जाए ये जो आदेश भी है जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि माधवेंद्रपुरी वहां पे है ब्रज में और तुम जो है जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से मेरे लिए चंदन लेके आओ, तो उनको जो है कोई इस भगवान के जो ये इंस्ट्रक्शन था इस पे उनको जो है किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हुआ, ना तो उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करने का प्रयास किया। वो चाहे तो सोच सकते थे कि अभी इतना अच्छा सब कुछ हो गया पूरा एस्टेब्लिश हो गया टेम्पल रोज यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी क्या दिक्कत है, लेकिन तभी अचानक से भगवान कहते हैं कि यहाँ से जाओ हजारों मील दूर जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ और माधवेंद्रपुरी जो है तुरंत इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो चाहे तो सोच सकते थे कि मेरे पास तो अभी इतना उस समय जो है ना तो कोई ट्रेन थी ना कोई प्लेन था कि लोग जो वहां पे चले जाए, उनको पैदल जाना था वहां से, ना तो उनके पास कोई सेवक था ना कुछ लक्ष्मी थी कि उतने दूर जो है वहां पे पैदल जाते और जो है वहां से फिर चंदन लेकर आते। वो चाहते तो इस इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट भी कर सकते थे, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है यहीं ब्रज में भी चंदन मिलता है या कहीं से भी लेके भगवान के ऊपर चंदन का लेप भी तो लगाना है। उन्होंने ना तो उसको उसके ऊपर कुछ भी डॉट किया ना उसको कुछ किसी तरह से एडजस्ट करने का प्रयास किया, जैसे भगवान ने कहा उसी तरह से उन्होंने बस अगले दिन जो है जाने की तैयारी करने लग गए। और वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने उन्हें सबको बुलाया वहां पर और उसी समय जो वहां पे 2 ब्राह्मण भी बंगाल से आए थे उनको माधवेंद्रपुरी ने विग्रह की सेवा में लगाया, उसके अलावा जितने भी लोग थे उन सबको अलग अलग सेवाएं दी वहां पे और सब जो है पूरा हैंडओवर करने के बाद पूरा सेवा को जो एडजस्ट करने के बाद फिर जो है वो पुरी की तरफ निकलते हैं। तो जब वो पुरी जा रहे होते हैं तो उस समय सबसे पहले वो मायापुर जाते हैं और मायापुर में जो है वहां पे वो शांतिपुर जाते हैं, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं और जब अद्वैत आचार्य देखते हैं कि उनके घर पे माधवेंद्रपुरी आए, तो वो बहुत ही उनको देख के बहुत ही खुश होते हैं और वो माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है दीक्षा दे। उसके बाद जो है माधवेंद्रपुरी उनको दीक्षा देते हैं और फिर उसके बाद वो आगे पुरी की तरफ निकलते हैं। और जब वो पुरी जाते हैं तो वो भी जो है पुरी जाने से पहले रमुना में जहाँ पे गोपीनाथ जी का विग्रह है वहाँ पे जो है वो पहले रुकते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं रमुना के मंदिर में माधवेंद्रपुरी, तो वहाँ पे पहुँचते ही उनको एक अलग सा पूरा वातावरण लगा। वो पहुँचते ही वो समझ पाए कि इस मंदिर में जो है भगवान की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा हो रही है। तो जब भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा हो रही है तो वो सोचने लगे कि यहाँ पे जो है भगवान को अच्छा अच्छा भोग भी लगाया जा रहा होगा। तो फिर उन्होंने वहाँ पे पुजारी से मिले और उनको बताया कि वो किस तरह से वृंदावन से यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ का भगवान की सेवा को देखकर बहुत ही खुश हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा होती है, किस तरह से क्या भगवान को भोग लगता है, ताकि इन सब चीज़ों को समझ के वापिस जब वो ब्रज में जाएं, गोवर्धन जाएं, तो अपने गोपाल की उसी तरह से सेवा करें। तो फिर पुजारी उनको सब कुछ बताते हैं और फिर उसी समय जो है पुजारी भगवान को भोग लगाने के लिए जो अमृत वेली का खीर है वो 12 कसोरे वहाँ पे लेके आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी ये देखते हैं तो उनके मन में आता है कि ये जो भगवान को भोग लग रहा है, एक्चुअली वो किसी से मांगते तो थे नहीं, तो उनको लग रहा था कि बिना मांगे अगर कोई मुझे इसमें से थोड़ा खीर टेस्ट करने के लिए देता ताकि मैं इसको समझ पाऊँ कि इसका टेस्ट कैसा है और इसको किस तरह से बनाना है, ताकि मैं जब वापस जाऊँ तो अपने गोपाल की उस तरह से सेवा कर पाऊँ। लेकिन फिर उस समय जो है भगवान को भोग लगने जा ही रहा था, तो फिर वो रुके और थोड़ा सोचे कि ये तो मेरे से बहुत अपराध हो गया, अभी तो भगवान को भोग लगने ही जा रहा है तभी मैंने ऐसा सोच लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, कई लोग के घरों में भगवान के विग्रह या मंदिर में भी पुजारी भोग लगाते हैं, तो भोग लगने से पहले ना तो उसको खाना चाहिए और ना ही खाने के बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि ये मेरे से बहुत ही बड़ा अपराध हुआ, तो फिर वो जो है वहाँ से मंदिर से निकल जाते हैं, मंदिर से चले जाते हैं। और मंदिर जब जाते हैं तो तब तक शाम हो चुकी होती है और पूरा का पूरा मार्केट बंद हो जाता है। तो उस मार्केट में वो एक एकांत स्थान पे जहाँ पे शांति थी वहाँ पे जाके बैठते हैं और फिर अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगते हैं। और इधर पीछे मंदिर में जो है पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद जो है भगवान को जो है जैसे शाम को जो वहाँ पे प्रथा थी भगवान को रेस्ट कराने के बाद पुजारी जाते हैं और पुजारी भी जाके सोते हैं। तो उसी समय जो है भगवान जो है उस पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, छिर एक राखी अच्छी सन्यासी करण। हे पुजारी कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो, मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया है। धधार अंचल ढाका एक छी रह, तुमार ना जानिल आमार माया। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। माधवपुरी सन्यासी आछे हाटे ते वसिया, ताहा के ताई छिर शीघ्र दे लिया। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है, तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। इस तरह से भगवान जो है पुजारी को सपने में आते हैं और बोलते हैं कि तुम जो है इसे देख नहीं पाए, मैंने अपनी माया के कारण जो है इसको पर्दे के पीछे छुपा दिया था, अब इसको उठाओ और उस मार्केट में जो माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी है उसके पास तुरंत लेकर जाओ। तो फिर वो पुजारी उठता है और फिर जाता है और देखता है कि सचमुच वहाँ पे जो है एक जो दोना जो है वो खीर पड़ा हुआ है। तो पुजारी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी गलती तो इससे पहले कभी हुई नहीं थी, मैं रोज उठाकर ले जाता था तो आज कैसे ये रह गया। फिर वो वहाँ से उठाते हैं और उसके बाद जो है वह मार्केट में जाते हैं और इस माधवेंद्रपुरी के नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। तब जैसे कि शाम का समय था, सब सो रहा था, तब उन्होंने देखा कि ये पुजारी जो है इस तरह से चिल्ला रहा है कि माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी कौन है यहाँ पे, भगवान ने उनके लिए स्वयं ये खीर का दोना चुराया है, कृपया करके आओ उसे लो। तो पूरे मार्केट में पूरा शांति थी, लेकिन माधवेंद्रपुरी वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने सुना। तो फिर वो गए वहां पे उस पुजारी से मिले, और फिर पुजारी ने उनको वो खीर का दोना दिया और उनको बताया कि किस तरह से भगवान उनके सपने में आए, और उन्होंने बताया उनको कि ये खीर का दोना जो है माधवेंद्रपुरी को देना है। तो जब माधवेंद्रपुरी ये लेते हैं तो बहुत ही जो है, बहुत ही मतलब भगवान के प्रेम में दोबारा से वो जो है उन्मत्त हो जाते हैं। वो सोचते हैं, भगवान का गुणगान करने लगते हैं कि वास्तव में भगवान जो है भक्त वत्सल है। मैंने तो सिर्फ सोचा था कि वो भी सोचा था कि ये जो खीर कोई मुझे थोड़ा टेस्ट कराए ताकि मैं वापिस जाकर गोपाल की सेवा कर पाऊं, लेकिन ये तो मैंने बिल्कुल गलत समय पर सोचा था जब भगवान का भोग लग भी नहीं रहा था। मैंने उल्टा अपराध किया था, लेकिन फिर भी भगवान ने जो है मेरे लिए ये खीर का दोना भेजा। वास्तव में माधवेंद्रपुरी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था। उन्होंने उनकी क्या उनकी भावना थी कि मैं इस खीर के जो है, उन्होंने अपने लिए उन्होंने खीर नहीं मांगा था कि खीर जो है मुझे दे दो, मुझे खाना है, मुझे इसको टेस्ट करना है। नहीं, वो तो चाह रहे थे कि थोड़ा सा मुझे मिल जाए, कोई आकर दे दे ताकि मैं इसका टेस्ट को समझ कर इसी तरह से भगवान के लिए बना पाऊं। लेकिन फिर भी वो इस तरह से अपने आप को मान रहे थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उस खीर को खाया, और फिर पुजारी वहां से चले गए, और खीर खाने के बाद जो वो मिट्टी का कुल्लर था उसको उन्होंने पूरा तोड़ करके अपने कपड़े में बांध लिया, क्योंकि वो जो मिट्टी का कुल्लर था वो कोई साधारण नहीं था। भगवान स्वयं जो है उसके अपने हाथों से उठाकर माधवेंद्रपुरी के लिए रखा था, उसको खाया था, तो इसलिए जो है उन्होंने रखा। और प्रतिदिन जो है माधवेंद्रपुरी उस जो कुल्लर की मिट्टी थी उसको रोज खाते थे। और ये सब होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अभी तो ये पुजारी ने सबको बता दिया कि भगवान ने जो है मेरे लिए खीर चुराया है, तो मैं इस तरह से जो है लोग हर जगह सबको पता चल गया, तो लोग सोचेंगे कि अब जो लोग मेरे पास आएंगे सब मुझे प्रणाम करेंगे, सब जो है मेरे से कुछ पूछेंगे, सब मेरी सेवा करने आएंगे कि मैं अब इतना फेमस हो गया हूँ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी यहाँ पे जो है ठीक नहीं है ज़्यादा रुकना, मेरे लिए जो है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये एक महाभागवत जो एक परमहंस वैष्णव है उनका एक विचार होता है। अब वैसे देखा जाए साधारणतया तो हमें क्या लगता है कि अगर ये सब चीज़ें जो पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो ये मेरे भक्ति के लिए ठीक नहीं है। हम इसको उल्टा सोचते हैं। माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे अगर ये सब मिलेगी तो मेरे लिए ठीक नहीं है, पर हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि अगर भक्ति में अगर मुझे रिस्पेक्ट ना मिले, मान ना मिले, सम्मान ना मिले तो हमारी भक्ति जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। खैर, माधवेंद्रपुरी फिर वहाँ से निकलते हैं और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुँचने से पहले जब माधवेंद्रपुरी वहाँ पर पहुँचते उससे पहले ही सबको पता चल गया कि किस तरह से जो गोपीनाथ है माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया, और किस तरह से ये सारी लीला जो है वहाँ पे हर किसी को पता चल गया। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो वास्तव में ये जो प्रसिद्धि है, ये जो एक फेमस होने का वो है कि भक्त जो है कभी भी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागती। जैसे हम जानते हैं कि जो लक्ष्मी होती है वो बहुत चंचल होती है, इसी तरह से जो प्रसिद्धि देवी है वो भी बहुत चंचल है। हम देखते हैं साधारणतया पूरे समाज में हर कोई जो है फेमस बनना चाहता है, हर कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है। तो अगर मान लिया किसी को मिल भी जाता है प्रसिद्धि तो कुछ दिनों तो रहता है और फिर उसके बाद वहां से चल, ये हम देखते हैं संसार में और अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि कुछ आज तो पूरा का पूरा संसार जो हमारा प्रशंसा कर रहा है और कल कुछ होता है तो सब लोग जो है निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कभी भी प्रसिद्धि को या अपने इस चीज को कभी भी उसका पीछा नहीं करते, बल्कि उल्टा माधवेंद्रपुरी के पहुंचने से पहले वो वहां पे फेमस हो चुके थे। यानी भक्तों के पीछे पीछे जो है प्रसिद्धि देवी जो है खुद वो उनका पीछा करती है। तो फेमस होने का जो है ये एक नेचर है कि अगर आप चाहेंगे कि मेरा हर जगह जो है गुणगान हो, हर जगह हम फेमस हो, तो हम कभी नहीं होंगे। लेकिन खैर, जो भक्त होते हैं ना तो वो फेमस के पीछे भागते हैं और ना ही अपमान से डरते हैं, ना ही मान के पीछे भागते हैं, ना ही अपमान से डरते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान की सेवा करना। तो जब ये जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, सब लोग माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करने लगते हैं, सब लोग उनसे कुछ पूछने लगते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रमुना में ये स्थिति थी तो माधवेंद्रपुरी जो है वहां से भाग जाता है जगन्नाथपुरी की तरफ। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो वहां भी वही वो स्थिति फिर से हो रही है, हर जगह उनका गुणगान हो रहा है, लोग आ रहे हैं उनके पास, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है यहां से नहीं जाते, यहां से नहीं भागते, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं भागते? पहले तो वो भाग गए, वो चाहते थे मेरा गुणगान ना हो, लोग मेरा जो है हर जगह मेरा इस तरह से यश फैलेगा, लेकिन यहां से वो नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे भगवान की सेवा करने के लिए गए थे, भगवान के लिए चंदन लाने के लिए वहां पे गए थे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से माधवेंद्रपुरी ने ये जो यश है उसको भगवान की सेवा में लगाया। जब उनके अपने ऊपर था तो वहां से भाग गए, लेकिन यहां पे उन्होंने सोचा कि यहां से अगर भागूंगा तो भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने अपने यश को भगवान की सेवा में लगाया और उस इसी से वो जो है उन्होंने भगवान के लिए चंदन प्राप्त किया और फिर वो चंदन लेके आए। तो वहां पे पहुंचने के बाद जो है माधवेंद्रपुरी वहां पे उस मंदिर के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी से मिलते हैं और उनको सारी घटना सुनाते हैं कि किस तरह से गोपाल ने उनको गोवर्धन से भेजा है यहाँ पे चंदन लाने के लिए। तो फिर उन लोगों की मदद से जो है वो वहां पे कुछ सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं और वहां के जो लोग हैं उनको फिर माधवेंद्रपुरी को लगभग हर तरह से जो है उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा 40 लगभग 40 किलो चंदन जो है माधवेंद्रपुरी को देते हैं और कुछ कर्पूर देते हैं और साथ में ही उनको जो है एक ब्राह्मण सेवक साथ में देते हैं और एक दूसरा अन्य सेवक हेल्पर उनको देते हैं और साथ में कुछ जो है धनराशि भी देते हैं ताकि यहाँ से वहां तक जाने में, हम जानते हैं कि जो बीच बीच में वहां पे जो टोल टैक्स था उसके लिए उन्होंने कुछ धनराशि भी देते हैं और साथ में जो है उन्होंने एक पूरा गवर्नमेंट का जो है जो पेपर बना के दिया कि अगर उनको रास्ते में कोई रोकते हैं तो किस तरह से वो इस पेपर को दिखाकर वहां से आगे निकल सकते हैं। तो इस तरह का सारा कुछ उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट किया और फिर वो वहां से जो है वापस गोवर्धन की तरफ आते हैं। तो फिर रास्ते में जो है दोबारा वो रास्ते में गोपीनाथ जी के रमना फिर से वो एक बार जाते हैं वहां पे, फिर गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो फिर जब यहाँ पे पुजारी देखते हैं उनको तो फिर दोबारा से देखकर जो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो फिर उसी रात जब वहां पे माधवेंद्रपुरी रुकते हैं तो भगवान जो है तीसरी बार उनके सपने में फिर से आते हैं और फिर उनको भगवान बोलते हैं कि मैं जो है वास्तव में तुम्हारा मैं परीक्षा ले रहा था और मैं इस तुम्हारी समर्पण से, इस सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम्हें जो है अब इतना दूर जो है चंदन लाने की आवश्यकता नहीं है, तुम वहीं पे उसी मंदिर में तुम जो है गोपीनाथ जी के उसी गोपीनाथ के दिव्य शरीर पे चंदन का लेप करो। तो अगर गोपीनाथ के चंदन पे शरीर पे चंदन का लेप करोगे तो उससे मैं भी जो है मुझे भी ये ठंडक पहुंचेगी, मैं भी बिल्कुल जो है ठंडा हो जाऊंगा। तो वास्तव में हम यहाँ पे देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही मुश्किल से वो वहां से चंदन लेकर आ रहे थे। 40 किलो का चंदन था, उनके साथ में एक ब्राह्मण था और एक हेल्पर था, तीनों बहुत ही मुश्किल से रेमुना तक चंदन लेकर आए थे। अभी तो रेमुना तो बहुत नजदीक है जगन्नाथपुरी के, वहां से यहां तक आना तो और भी मुश्किल था। तो भगवान ने ये सब देखा लेकिन माधवेंद्रपुरी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जो है इतना इतना मतलब मुश्किल से जो है वो चंदन लेके आ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, टोल टैक्स में बड़ा मुश्किल से वो पास हो रहे थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी जो है इसमें उनको आनंद आ रहा था। ये जो स्ट्रगल कर रहे थे भगवान की सेवा के लिए इसमें उनको बहुत आनंद आ रहा था। वास्तव में हम देखते हैं कि ये स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति अगर भगवान का वास्तव में अगर प्रेमी भक्त हो तो वही जो है इस तरह से भगवान की सेवा में आनंद ले सकता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई माँ है, माँ को अपने बच्चे को पालन पोषण करने में कितनी कठिनाई होती है, कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि ये बच्चा क्यों आ गया इसका, या इसका मुझे इस तरह से इतना मेहनत लगता है इसको पालने पोषने में, नहीं। क्योंकि माँ को बच्चे से प्रेम है तो वो हमेशा हर तरह से और बहुत ही प्रेम से अपने बच्चे की सेवा करती है। उसी तरह से माधवेंद्रपुरी को तो पूरा आनंद मिल रहा था, इतने हम देखते हैं हालांकि इतना कठिनाई थी पर फिर भी वो तो इसमें उनको आनंद आ रहा था भगवान की सेवा में। लेकिन भगवान जो है वो इस सब चीज को समझ रहे थे, भगवान जो है भक्त वत्सल है वो समझ रहे थे कि माधवेंद्रपुरी जो है कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो वो पुरी से रेमुना आए थे, अब रेमुना से यहाँ पे आने के लिए अभी कितना दिन लगता और वहां से जो इधर का रास्ता है वो तो और भी बहुत ही खतरनाक रास्ता है। जगह जगह पे जो है मुस्लिम गवर्नमेंट के जो है लोग घूम रहे होते हैं, जगह जगह पे जो है पूरा का पूरा रास्ता जंगल का है और लोग जो है कहीं रास्ते में कहीं चोर डकैत इस तरह से, तो भगवान को पता था कि इतनी जो है सो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इसको। इसलिए भगवान जो है उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो है सो तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, और ये वास्तव में ये सेवा और कोई नहीं कर सकता था, तुम ही थे जो इसको कर सकते थे, और तुम जो है बिल्कुल इस चीज पे जो है सो खड़े उतरे हो, तो अब तुम्हें इतने दूर आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो है वहीं पे गोपीनाथ जी के शरीर पे इस चंदन का लेप करो, तो उसी से जो है मैं ठंडा हो जाऊंगा। तो फिर जब स्वप्न खत्म होती है तो फिर माधवेंद्रपुरी जो है सो वहाँ के उस पुजारी को बुलाते हैं और बताते हैं किस तरह से जो है भगवान उनके सपने में इस तरह से आके आदेश देते हैं। तो वहाँ के जो पुजारी थी वो भी सुन के बहुत खुश होते हैं कि अब किस तरह से जो है यहाँ पे गोपीनाथ जी की बड़े अच्छे से सेवा होने वाली है। तो माधवेंद्रपुरी उनको कहा कि देखो मेरे साथ एक ब्राह्मण है, एक और सेवक है, तुम जो है और दो सेवक को लेकर आओ इस तरह से, और उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। और इस तरह से वो चार लोग जो है पूरा का पूरा दिन चंदन को घिसते थे, और उसमें चंदन घिसते थे, फिर कर्पूर मिक्स करके भगवान के जो है पूरे दिव्य शरीर पे इसका लेप किया जाता था। तो इस तरह से वो जब तक चंदन रहा तब तक जो है इस तरह से चलता रहा, और इस बीच में जो है सो भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सेवा हुई, और वहाँ के जो रेमुना निवासी जितने भी लोग थे सब इस चीज़ को देख कर बहुत ही खुश थे। तो फिर इस तरह की जो है सारी जो भी कथा थी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को सुनाया, और फिर बाद में जो है ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस तरह से माधवेंद्रपुरी का गुणगान करने लगते हैं और कहते हैं कि मतलब माधवेंद्रपुरी जो है कितने महान भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे कि स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सपने में तीन तीन बार आए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी सेवा में लगाया। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु को कि देखो नित्यानंद तुम ही जज करो कि इस पूरे तीनों ब्रह्मांड में माधवेंद्रपुरी जैसा और कोई दूसरा भक्त हो सकता है जिनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी। तो इस तरह से वो माधवेंद्रपुरी का बहुत गुणगान करते हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे कि माधवेंद्रपुरी को बताया जाता है कि वो जो है गोष्ठानंदी, सबसे बड़े गोष्ठानंदी भी थे और सबसे बड़े भजनानंदी भी थे। वो इतने बड़े मतलब दोनों के आचार्य है, भजनानंदी भी और गोष्ठानंदी भी। कोई कह सकता है कि वो इतने बड़े भजन में थे, हमेशा भगवान के प्रेमी भक्त थे, हमेशा भगवान के प्रेम में रहते थे, तो ये सब इतना करने की क्या जरूरत थी। हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने वो पूरा का पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, और माधवेंद्रपुरी ने ही सबसे पहले जो है किसी भी उत्सव को सेलिब्रेट करना शुरू किया, किस तरह से कोई फेस्टिवल मनाया जाए। इस पूरे पूरे फेस्टिवल में देखते हैं कि कितना बड़ा मैनेजमेंट था। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये जितना भी उन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, पूरा अभिषेक भोग अन्नकूट ये सब के सब सिर्फ एक दिन में हुआ था। ये सारा का सारा व्यवस्था उन्होंने एक दिन में किया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई भगवान का प्रेमी भक्त हो, या अगर कोई बहुत ही दृढ़ भक्त हो जिसका की विचार बहुत ही मतलब हमेशा उसमें हो, तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि आज कितना ही कम समय हुआ, लेकिन आज सिर्फ जो है इतने 5 या 6 सालों में कृष्ण भावना में जो है आज पूरे संसार में देखते हैं कि किस तरह से पूरा फैल गया। वो किस लिए? क्योंकि प्रभुपाद जी की जो है भगवान के प्रति वैसा समर्पण था। माधवेंद्रपुरी इतने बड़े भजनानंदी थे, अपने लिए कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ बिना मांगे थोड़ा सा जो है दूध अगर आ जाता था तो पी के सोते थे, लेकिन भगवान के लिए इतना कुछ, भगवान के लिए उन्होंने इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। अभी हम एक जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं, 4 महीना 5 महीना पहले से उसकी तैयारी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं इसलिए जो, और उन्होंने यहाँ पे इतना सारा मैनेजमेंट किया वो भी सिर्फ एक दिनों में। तो अगर तभी बताया जाता है ये जो मैनेजमेंट है ये है, अगर कोई इसमें ये जो है महाभागवत जो शुद्ध भक्त है उसी के लिए बनाया है। अगर हम जितना हमारा चेतना शुद्ध होगा उतना जो है ये सब चीज़ें जो है आसान हो जाती है। और प्रभुपाद जी ने भी कहा कि किस तरह से अगर भक्तों का डेडिकेशन हो, प्रभुपाद ने कहा कि अगर सिर्फ मुझे 18 लोग मिल जाए, 18 लोग मिल जाए और मैं उसको जो जो बोलूं अगर वो वही चीज करता है तो बहुत कम समय में पूरा का पूरा विश्व बदल सकता है। तो ये जो है शुद्ध भक्तों का जो है, एक प्रेमी भक्तों का, उनके अंदर ये शक्ति होती है, तभी भगवान की कृपा से इतना कुछ संभव हो पाता है। ये कोई आसान नहीं था कि इतने कम समय में आज इस्कॉन के इतने सारे सेंटर खुल गए, या इतना यहाँ पे हम देखते हैं एक ही दिन में माधवेंद्रपुरी ने इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इस तरह से समय हो गया। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी में भी हम जानते हैं कि जो दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी हैं उसको तो कहीं उठाकर नहीं ले जाते, लेकिन जो वहाँ पे उत्सव विग्रह है गोविंद देव जी उनको जो वहाँ पे नरेंद्र सरोवर में ले जाता है आज के दिन, और वहाँ पे जो है पूरा नौका विहार होता है। तो इसी तरह से जितने भी चाहे वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, दक्षिण भारत हो, जहाँ जहाँ पे जितने भी मंदिर हैं हर जगह जो भगवान श्री कृष्ण के जो है शरीर दिव्य शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है, और हम देखते हैं इसी समय इस्कॉन के भी जितने भी मंदिर हैं हर जगह जो है इस 20 दिनों में जो भगवान के शरीर के ऊपर चंदन का लेप होता है, और इसी समय जो है अलग अलग मंदिरों में हम देखते हैं कि बहुत फेस्टिवल भी होते हैं, नौका विहार भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वास्तव में देखा जाए हम ये सब भगवान से ही आया है, ऐसा भगवान की तो इस तरह से भगवान को जो है कोई ऐसे पत्थर की मूर्ति या फिर इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए, ये स्वयं भगवान है, और भगवान जो है व्यक्ति समझ कर उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस संसार में हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे में एसी में चले जाते हैं, है कि नहीं, या फिर कई लोग अभी देखेंगे आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो दिल्ली से कई लोग जाते हैं वहाँ पे गंगा में स्नान करने के लिए, है कि नहीं, अपने शरीर को ठंडक मिले। तो उसी तरह से भगवान भी व्यक्ति हैं, भगवान को भी जो है गर्मी लगती है, और एक भक्त का ये भाव है कि भगवान को जो है उसी रूप में जो है उनका सेवा करता है, हम भगवान को उसी तरह से एक व्यक्ति समझकर भगवान को भोग लगाते हैं, अब भोग लगाते हैं फिर उतना ही समय छोड़ते हैं जितना कि एक व्यक्ति को खाने में लगता है, फिर उसके बाद जो है भगवान को भी ठंडा लगता है, तो इस तरह से चंदन का लेप होता है। तो इस तरह से हर जगह इस 20-21 दिनों में होता है, और इस दिनों में जैसे कि हम जानते हैं आप में से कई भक्तों ने इस चंदन घिसने में भाग लिया होगा, और अभी आने वाली और 20 दिनों तक ये चलेगी, तो इस आज के दिन जो है हम माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान के प्रति उनका समर्पण था और किस तरह से जो है उनके प्रति इतनी भक्ति थी। तो आप सब जो है आइए, और प्रतिदिन बाहर जो है जैसे प्रभात कहते थे कि जो ये सब चीज़ तो ठीक है लेकिन डू समथिंग प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल क्या है, बाहर आके वहाँ पे चंदन घिसिए, और चंदन घिसने के बाद जो है वही चीज़ जो है भगवान को ऑफर होगी। कई बार देखते हैं कि चंदन घिसने आते हैं लोग, लेकिन चंदन घिसने से पहले वहाँ पे कुछ निर्देश लगाए गए हैं तो उसको भी जरूर पढ़ें। भगवान की सेवा तो करनी चाहिए लेकिन किस तरह से करनी चाहिए वो माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पे सिखाया है, तो उसके लिए जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़िए, और उसी तरह से जो है फिर उसको हम सेवा कर सकते हैं, और इस तरह से हम भी जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरुशील प्रभुपाद की, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, श्री श्री राधा राधवन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नितायुगोपनंदन। हरे कृष्ण।